Srimad Bhagavad Gita, as it is, Chapter 7, Knowledge of the Absolute, Text 28. Yesham tvantagatam papam jananam punyakarmanam te dvandvamoha nirmukta bhajante mama dridhvataha. Translation prepared by Srila Prabhupada. Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. Purport. Those eligible for elevation to the transcendental position are mentioned in this verse. For those who are sinful, atheistic, foolish, and deceitful, it is very difficult to transcend the duality of desire and hate. Only those who have passed their lives in practicing the regulative principles of religion, who have acted piously, and who have conquered sinful reactions, can accept devotional service and gradually rise to the pure knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Then, gradually, they can meditate in trance on the Supreme Personality of Godhead. That is the process of being situated on the spiritual platform. This elevation is possible in Krishna consciousness in the association of pure devotees, for in the association of great devotees one can be delivered from delusion. It is stated in the Srimad Bhagavatam 5.5.2 that if one actually wants to be liberated, he must render service to the devotees. Mahat sevam dwaram ahur vimukteh. But one who associates with materialistic people is on the path leading to the darkest region of existence. Tamo dwaram yoshitam sangi sangam. All the devotees of the Lord traverse this earth just to recover the conditioned souls from their delusion. The impersonalists do not know that forgetting their constitutional position as subordinate to the Supreme Lord is the greatest violation of Lord's law. Unless one is reinstated in his own constitutional position, it is not possible to understand the Supreme Personality or to be fully engaged in his transcendental loving service with determination. Om Jnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Bhagwan ki seva mein rathuna jeev ki swabhavik sthiti hai. तो फिर हम क्यों भगवान की सेवा में स्थिर रूप से नहीं लग पाते हैं, दृढ़ता से हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं. हम कई बार अक्सर हम ये अनुभव करते हैं कि हमारा मन कभी सेवा करने के थोड़ा सा इच्छुक होता है, लेकिन ज़्यादातर तो इंद्रिय भोग के लिए ललायित रहता है. तो इस प्रकार से ऊंच नीच हमारे जीवन में चलती रहती है भक्ति सेवा करने के लिए. सामान्यतया लोग तो उदासीन है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत उदासीन है. सेवा उदासीन, इंद्रिय भोग में बड़ा उत्साह है. मानसिक इंद्रिय भोग, भौतिक इंद्रिक ग्रॉस सेंसेस का इंद्रिय भोग, बौद्धिक इंद्रिय भोग, ये सब में बहुत उत्साह है, लेकिन भगवान की सेवा करने में उदासीन है. तो इसका मूल कारण है, यानी वो लोग जो अभी शास्त्रों को सुनकर के भी समझ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी अभी वो उत्साह पूरी तरह से नहीं आया है. क्यों? तो उसका मूल कारण है अनर्थ. जो हमारे अंदर अनर्थ है, जो गंदगी है, वो हमारे को ढके हुए है. इसलिए वो जो स्वाभाविक आकर्षण या स्वाभाविक सेवा भाव है वो प्रकट नहीं हो पा रहा है. आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है उसको वो कवर्ड है, इसलिए उसको हटाने की जरूरत है. तो जो पाप कर्म के प्रतिफल हैं पाप कर्मों के प्रतिफल, जो भी कर्मों के प्रतिफल, पाप पुण्य सबके जो प्रतिफल हैं, वही हमारे रास्ते में बाधक हैं भगवत प्रेम प्राप्त करने के। क्योंकि वो जो कर्मफल होते हैं वो शरीर उत्पन्न कराते हैं और भौतिक भावनाएं उत्पन्न कराते हैं, उससे वासनाएं उत्पन्न होती हैं उससे, कर्मफलों से। तो अलग अलग प्रकार के कर्मफल होते हैं ना। अप्रारब्ध कर्म अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते भगवत भक्ति रतात्मनः। तो कर्मफल एक होते हैं अप्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब कौन से कर्मफल? पूर्व जन्मों के, पूर्व जन्मों के ही तो कर्मफल होते हैं। आने वाले जन्मों के तो कर्मफल अभी कहाँ बने ही नहीं। क्या बोले आप? हाँ, जो अभी फलित नहीं हुआ है, जो फल फलित नहीं हुआ है, जो अभी फल नहीं बना है, जिसको अभी हम चख नहीं रहे हैं, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध कर्मफल। और फलोन्मुखम, जो अभी हम चख रहे हैं, प्रारब्ध, उसको बोलते हैं प्रारब्ध या फलोन्मुखम। और दोनों के बीच में जो है कूटम बीजम, जो अभी चखे नहीं है लेकिन जो अभी फलित होने की स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में है, कूट बीज, बीज, और उससे पहले की स्टेज है कूट, सटल बीज, सूक्ष्म रूप में बीज, कूटम बीजम फलोन्मुखम। तो ये जो कर्म फल हैं, अनादि कर्म फल, अनादि समय से ये कर्म फल जो हमारे कहां पर हैं, ये कर्म फल कहां पर, जो अप्रारब्ध कर्म फल हैं वो कहां संचित हो रहे हैं? सूक्ष्म शरीर में संचित हो रहे हैं, वहां पर सब इम्बेडेड है, इम्बेडेड सूक्ष्म शरीर में इम्बेडेड है। और कर्म नियम के अनुसार समय आने पर ये फलित होते रहते हैं। तो वो जो सब प्रकार के कर्म फल हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध, उन्हीं की वजह से जीव की जो स्वाभाविक चेतना है वो पूरी ढकी हुई है, जिसकी वजह से वो कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है, कृष्ण की सेवा के लिए आकर्षित नहीं, उदासीन है। ये डायग्नोसिस है हमारी बीमारी का। कृष्ण सेवा में हम उदासीन क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे कर्मफल हमारे को बांधे हुए हैं। तो इसलिए जब तक ये कर्मफल नहीं खत्म होंगे, जो भी तक संचित हैं, और आगे और कोई कर्मफल नहीं बनाएंगे, जो संचित है उनको खत्म करना है, और ऐसा कार्य करना है, इस प्रकार से कार्य करना है कि आगे और कोई कर्मफल नहीं बने, तो फिर हम जब कर्मफलों से मुक्त होंगे, तो जिस अनुपात में कर्मफलों से मुक्त होंगे उस अनुपात में हमारी भगवान की सेवा में उत्सुकता, दृढ़ता, गंभीरता आएगी, टेस्ट, रुचि सब आएगी। तो इसलिए यहां पर क्या गया, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। अभी पाप कर्मों में भी, कर्मफल में भी मुख्य रूप से जो पाप कर्म है वो बहुत ज्यादा जीव के जो स्वाभाविक गुण है उसको ढकती है। पुण्य कर्म भी ढकता है, लेकिन पुण्य कर्म कुछ हद तक आत्मा का स्वभाव रिवील करता है। जैसे उदाहरण देखें, एक पौंड है, पौंड पानी का एक तालाब है। अभी तालाब में पानी जो है वो ऊपर का जो पानी होता है उसमें प्रकाश जा पाता है, और नीचे जाएंगे तो कम, और बिल्कुल गहराई में जाएंगे तो बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो अभी कोई आदमी जो है गोताखोर, वो नीचे से बिल्कुल उसकी जो तलहटी है वहां से ऊपर आ रहा है, तो जब बिल्कुल अंधकार में है तो वहां बिल्कुल आपको कुछ दिखेगा ही नहीं वो आदमी का रूप। जब थोड़ा सा बीच में को आएगा तो आपको एक धुंधला धुंधला कोई कुछ चीज है कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और फिर जब बिल्कुल सतह पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो उसका रूप पूरा दिखेगा, लेकिन अभी भी वो पानी में भीगा हुआ होगा। तो इस तरह से जो पाप है वो यानी तमोगुण वो इस प्रकार से है जो जीव की स्वाभाविक रूप को पूरा आच्छादित कर देता है, जैसे कि डीप वाटर्स में कोई आदमी है, कैनॉट बी आइडेंटिफाइड, कैनॉट बी सीन, उसका स्वरूप जो है वो दिख ही नहीं रहा है, प्रकट ही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो सत्वगुण की तरफ आता है तो आत्मा का जो स्वाभाविक, व्यक्ति का जो स्वाभाविक रूप है वो अभी दिखने लगता है, लेकिन फिर भी अभी भी वो पानी से आच्छादित है। तो उसी प्रकार से पाप कर्म फल हमें तमोगुण और रजोगुण से आच्छादित करते हैं, जिससे जो हमारी जीव की स्वाभाविक चेतना, स्वाभाविक स्वरूप है, बहुत अधिक बिल्कुल कवर्ड रहता है, इसलिए उसमें बिल्कुल स्फूर्ति नहीं होती भगवान की सेवा करने की। इसलिए जानवरों में जो मनुष्यों के कंपैरिजन में तमोगुण में हैं, उनके अंदर भगवान की सेवा के विषय में जानने के भी अवसर नहीं है। मनुष्यों में भी जो तमोगुण से आच्छादित हैं पाप कर्मों के फल की वजह से, वो भगवत चेतना में स्थित होना उनका वो और दूर है भगवत चेतना से। जो सत्वगुण में हैं वो आत्मा का उनका जो स्वरूप है वो ज़्यादा अधिक प्रकट है, इसलिए उनके लिए अच्छा ज़्यादा अवसर है कि वो पानी से बाहर अपने आकर के अपने स्वरूप में पूरी तरह से उसको मैनिफेस्ट कर पाएं। तो पाप कर्म कृत्य होने से, पाप कर्म करने से हम और अधिक तमोगुण रजोगुण से आच्छादित होते हैं। इसलिए ये शाम पुण्य कर्म, इसलिए शास्त्रों में पुण्य कर्म बताए। पुण्य कर्म क्या है? जो आत्मा का स्वरूप लक्षण है उसके आधार पर इस भौतिक जगत में इस प्रकार से कार्य करना जो हमें सत्वगुण में रखे, उसको पुण्य कर्म कहते हैं। पाप कर्म जो तमोगुण रजोगुण में हमें ले जाए वो पाप कर्म होते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना, सत्यता, ये आत्मा का एक स्वरूप लक्षण है। तो अभी जुआ खेलना वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो आत्मा का जो स्वरूप गुण है उसको ढकती है, इसलिए व्यक्ति मनुष्यों को सलाह है कि वो जुआ नहीं खेले, उससे उनका जो स्वरूप लक्षण है यानी कि वो उसके वो पायस एक्टिविटी है, मतलब पाप नहीं करना है, तो उससे वो स्वरूप जो है उनका प्रकट होगा, धीरे धीरे सत्वगुण की तरफ वो आएंगे। उसी प्रकार से हिंसा करना, उसका उल्टा दया करना, ये स्वरूप आत्मा का स्वरूप है दया करना। तो इसलिए जैसे जैसे एक्टिविटीज हम कर रहे हैं तो उसके अनुसार हमारे शुद्धि हो रही है, सत्वगुण में हम आ रहे हैं। तो इसलिए जो जिनके पाप कर्मों का फल पूरी तरह से खत्म हो गया है और जो पूरी तरह से पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं, श्री प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। पुण्य कर्म मतलब क्या? जो शास्त्र के विधि विधान के अनुसार जो कार्य करते हैं, जो कार्य करना है उसको पुण्य कर्म कहते हैं। मुख्य चार, व्यभिचार नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, आमिष आहार, एक्चुअली मांसाहार से भी ज्यादा सही शब्द है आमिष, तो प्याज लहसुन ये सब भी उसके अंदर आता है, और फिर जुआ नहीं खेलना और कोई प्रकार का नशा नहीं करना, फिर और बहुत सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं जो वर्णाश्रम सिस्टम के अंदर आते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, हर एटिकेट्स हर चीज के। तो वो सब उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है कि सत्वगुण में हमको लेके आना, जिससे क्या होगा, सत्वगुण में आने से हमको अवसर मिलेगा कि हमारी व्यक्ति जो है उसकी जो सत्वगुण में आने से वो भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर उसको मिलेगा, क्योंकि वो आदर सम्मान की भावना उसके अंदर डेवलप होगी भक्तों के प्रति सत्वगुण के प्रभाव से। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से अहंकार, दंभ, दर्प, तो इसकी वजह से, और नास्तिकता, और इसकी वजह से वो भगवान के भक्तों के प्रति अनादर का भाव रखेगा। अनादर का भाव रखेगा तो भक्तों का, भक्तों की कृपा, भक्तों का संग कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर भगवत भक्तों के प्रति उसका आदर का सम्मान, आदर की भावना है सतोगुण के होने से, तो भगवत भक्त तो घूमते ही रहते हैं कृपा देने के लिए, भगवत संदेश देने के लिए। तो ऐसे भगवत भक्त का वो आदर पूर्वक सत्कार करेगा, उनसे कुछ सुनने के लिए तैयार होगा, तो वहां से उसकी आध्यात्मिक सुकृति बननी शुरू हो जाएगी। और आध्यात्मिक सुकृति वो प्रवेश है ट्रांसेंडेंटल लाइफ में, शुद्ध सत्व की स्थिति में। तो इस तरह से सत्वगुण हमें मदद करता है भक्तों का एसोसिएशन प्राप्त करने के लिए, हमें हमारे मेंटेलिटी को अनुकूल बनाता है। उससे फिर हम भक्तों के संग से फिर हम भक्ति सुकृति प्राप्त करते हैं, और भक्ति सुकृति से फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है भगवान के नाम रूप गुण लीला में, और फिर उस श्रद्धा से हम साधु संग करते हैं, और साधु संग से फिर हमारे भजन क्रिया शुरू होती है, और फिर भजन क्रिया से अनर्थ खत्म होते हैं, और फिर उस अनर्थ खत्म होने से निष्ठा आती है, दृढ़व्रता, दृढ़व्रत भक्ति। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। तो ये जब अनर्थ खत्म होते हैं तब भक्ति में बहुत निष्ठा आती है। तो जो पाप कर्मों के फल हैं वो हमारी श्रद्धा को भी बैठने नहीं देते हैं, कोमल श्रद्धा जो स्टार्टिंग फेज है, आदव श्रद्धा। तो इसलिए पापी व्यक्ति जो हैं वो, उनके अंदर आरंभिक श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसलिए शास्त्रों का अनुसरण करके वो सात्विक जीवन अगर व्यक्ति जिए तो फिर उनके अंदर संभावना है कि वो आरंभिक श्रद्धा उत्पन्न हो पाए भक्तों का संग प्राप्त करके। आध्यात्मिक श्रद्धा, ये जो भक्ति में श्रद्धा है, ये सत्वगुण से ही केवल उत्पन्न नहीं हो सकती है। सत्वगुण से कभी भी भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है अपने आप में, केवल सत्वगुण से। भक्ति रस भाविता मति क्रियताम कुतो भी लभ्यते लौल्यम तत्रम एकलम मूल्यम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। तो बताया गया है कि जो भक्ति रस भाविता मति, ये मति जो भक्ति संपन्न करने की है, ये मति हमारी बुद्धि जिसके द्वारा हम ललायित होते हैं, प्रेरित होते हैं भगवान की सेवा करने की, अगर ऐसी मति कहीं मिलती हो तो तुरंत खरीद लो, सबसे बहुमूल्य चीज है। लेकिन क्या मूल्य देना पड़ेगा? लौल्यम तत्रम एकलम मूल्यम, उसका मूल्य है लालसा, ग्रीड, सेवा करने का ग्रीड, उससे वो भक्ति रस प्राप्त होता है। लेकिन ये ग्रीड जो है कैसे नहीं मिलता है? जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। कोटि कोटि जन्मों में भी यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, भौतिक पुण्य कर्म, केवल उनको करने मात्र से ये लौल्यम प्राप्त नहीं होगा, वो श्रद्धा प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए भक्ति का कोई भौतिक हेतु नहीं है, इसलिए भक्ति अहितु की कही गई है। कोई भी मेटीरियल चीज से हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बहुत साफ सुथरा रहता है, कोई सच बोलता है, केवल उससे उसको भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन ये सब धार्मिक नियम पालन करना जिससे सत्वगुण आता है, वो हमें भक्ति प्राप्त करने के लिए जो तरीका है भक्त संग, उसके लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित करती है, जिससे कि हमारे आसार बढ़ जाते हैं भक्त संग प्राप्त करने का, इसलिए वो हेल्पफुल है। समझ में आया? वो भक्ति का कारण नहीं है सत्वगुण, भक्ति को प्राप्त करने का कारण नहीं है वो, लेकिन वो सत्वगुण अनुकूल है भक्ति के लिए। इसीलिए यहां पर कहा गया है ये शांत अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्य, जिनके पाप कर्म फल खत्म हो गए हैं तो वो कैसे दृढ़वत रूप से भक्ति कर पाते हैं? क्योंकि वो पाप कर्म फल खत्म होने की वजह से, सत्वगुण उपस्थित होने की वजह से, वो भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए अभी तैयार हो जाते हैं, फिर उनको भक्त संग मिलता है, उससे फिर भक्ति दृढ़वत होती है। तो दृढ़वत भक्ति के लिए क्या जरूरी है? पहले कोमल श्रद्धा उत्पन्न हुई, तब हम भक्तों का संग करने के लिए उत्सुक हुए, थोड़ा सा भी इच्छा हुई, उसके बाद फिर भजन क्रिया करनी पड़ेगी, तब अनर्थ निवृत्ति होगी। और भजन क्रिया कैसे होती है? भक्तों के संग में ही भजन क्रिया होती है, भक्तों के संग के बिना, भक्तों के संग से ही तो भक्ति प्रारंभ होती है, भक्तों के संग से भक्ति चलती है, और भक्तों के संग से वो आगे आगे हमेशा पोषित होती है, और सिद्ध अवस्था में भक्तों के संग में ही भगवान की सेवा होती है। इसलिए भक्त संग जो है वो आरंभ, मध्य और अंत, हमेशा इटर्नली भक्तों का संग जो है वो भक्ति का अभिन्न भाग है भगवान की सेवा करने का, है ना। इसलिए हमारे लिए भगवत भक्त संग को सही प्रकार से समझना, उसके लिए तैयार होना, और वो बहुत जरूरी है। हाँ, कैसे हम भक्तों के साथ मिलकर के भगवान की सेवा कर सकें, भक्तों अलग अलग भक्तों की कैटेगरी के अनुसार उनसे कैसे रिलेशनशिप रखना है, वो सब हमें निश्चित रूप से सीखना होगा, करना होगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा माया हमको ऐसा विचार दे सकती है कि मैं अपनी भक्ति एकांत में करूँगा, अकेले करूँगा। भक्त साथ में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, मन मुटाव होते हैं, मैं बस अपना अलग बैठ करके अपना अलग भजन करूँगा। नहीं, अलग जो भजन करते हैं एकांकी भजन, वो कभी भी अलग नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक रूप में हमेशा जो भजनानंदी हैं, अति उत्तम स्तर पर जो भक्त हैं, वो कभी इसलिए एकांकी नहीं होते हैं, वो हमेशा गुरुजनों और पूरे भगवान के सभी पार्षदों के साथ में होते हैं। इसलिए वो एकांकी, तथाकथित एकांकी भजन कर पाते हैं। लेकिन नियोफाइट स्टेज में, यानी कि हमारी सबकी स्टेज जो बहुत आगे तक रहेगी, तो उसमें तो संभव ही नहीं है कि हम इस प्रकार से, हमें तो यहाँ पर व्यावहारिक रूप में संग चाहिए भक्तों का, जिनको हम देख सकें अपनी जड़ इंद्रियों से, जिनके साथ, जिनको हम सुन सकें अपने कर्णों से, जिनके साथ मिलकर के हम एक दूसरे से उत्साहित हो सकें, ये सब हमको चाहिए, जिनसे हम प्रश्न पूछ सकें। तो इसलिए हमें अपने को ऐसे भक्त संघ में हमेशा रखना चाहिए। तो भक्त संघ में भक्ति सेवा करने से वो धीरे धीरे अनर्थ खत्म होते हैं, वो इससे अनर्थ खत्म होने से दृढ़ रूप से हमारी स्थिति होती है भगवान की सेवा करने में। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद तात्पर्य में उद्धृत कर रहे हैं भागवतम में कि महत सेवाम द्वारा माहुर विमुक्ते, भगवान के महान भक्तों की सेवा करने से। अभी भक्तों के संग में उत्तम अधिकारी के साथ कैसे संग करना है, मध्यम अधिकारी के साथ कैसे संग करना है, कनिष्ठ अधिकारी के साथ कैसे संग करना है, ये फिर विस्तार से बताया है। उत्तम अधिकारी के साथ संग कैसे करना है, उनकी सेवा करके। मध्यम अधिकारी, हम मध्यम अधिकारी हैं तभी हम ये सब विचार कर रहे हैं अलग अलग भक्तों का, कनिष्ठ अधिकारी तो विचार ही नहीं करेगा। तो अगर हम मध्यम अधिकारी हैं तो उत्तम अधिकारी की सेवा करनी है, और जो हमारे समकक्ष मध्यम अधिकारी भक्त हैं उनके साथ मित्रता पूर्वक साथ मिलकर भगवान की सेवा करना है, और जो कनिष्ठ हैं उनको भगवत भक्ति का प्रचार करना है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर के भक्तों से हम अलग अलग प्रकार से डील करते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं। लेकिन विशेष रूप से महान भक्तों की सेवा करने से हमारी प्रगति होती है, और समकक्ष भक्तों से सभी जरूरी है, जैसे ऐसे भक्त सब प्रकार के भक्त होंगे। लेकिन तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, जो लोग स्त्री के हाथ के खिलौने हैं, यानी जो स्त्री के साथ या मैंने कि भौतिकतावादी सभी लोग, क्योंकि स्त्री संगी जो है वो भौतिकतावाद का एक पराकाष्ठा है, कि पराकाष्ठा है किसी प्रकार का जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसका संग करना वो नरक का द्वार है, ऐसा बताया गया। इसलिए हमें ऐसे भौतिकतावादी लोगों से कभी संग नहीं करना है, ये जीवन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। संग मतलब उनके साथ केवल सामाजिक डीलिंग हो सकती है, मिले तो नमस्कार किया, कुछ सेक्युलर वर्क, सामान्य कुछ काम है, मान ली रास्ते में जा रहे हैं, कोई मिल गया, चलिए थोड़ा ये हटिए, ये करिए, दुकान में जा रहे हैं, क्या है, कितना भाव है, बस ऐसे मिनिमम जितना केवल इस संसार में चलने के लिए, रहने के लिए जरूरी है। बाकी कभी भी उनसे घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए हमारे उनके संबंध में, हृदय से हृदय, वो सब डिटेल, उनका खाना खाना, उनको देना, गिफ्ट लेना देना, उनके मंथन की बात सुनना सुनाना, ये सब इस इंटीमेसी डेवलप होती है। तो उनकी सेवा करना, सेवा उनकी स्वीकार करना, ये सब चीज से इंटीमेसी डेवलप होती है। तो इसलिए असत संग, ये सब असत संग से बहुत बचना चाहिए, और असत संग से बचना चाहिए और साधु संग के लिए लड़ाई करना चाहिए, तो भक्ति में आसानी होगी, बहुत अनुकूलता होगी। हरे कृष्णा। भजन क्रिया आरंभ होती है गुरु दीक्षा से, गुरु से दीक्षा लेने से, फिर गुरु के सेवा करके भगवान की सेवा में रत रहना, वो भजन क्रिया है। हाँ, वही भजन है, नवविधा भक्ति, और अपने वर्णाश्रम कर्म भगवान को अर्पित करना, वो सभी कुछ हमारे भक्ति के अंग हैं, भजन क्रिया के भाग हैं। साधक, साधक के लिए ये सभी दोनों ही भजन क्रिया है।
कोई व्यक्ति जो बहुत तीव्र गति से भक्ति कर रहा है, कोई मंद गति से कर रहा है, तो क्या है उसके पूर्वजन्म के कर्मों के कारण, उसके पाप के कारण होता है सारी, या
दोनों ही होती हैं हमेशा से? हमारे पूर्व कर्म फल और हमारी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति, दोनों का मिश्रण होकर के ही हमेशा परिणाम बनता है। कर्म फल के अनुसार यदि किसी के अंदर बहुत अधिक पाप कर्मों का फल बहुत संचित है, तो वो उसको सेवा करने में रुकावट तो डालेंगे, उसके परिणाम बहुत सारी वासनाएं हैं हृदय के अंदर, पूर्व संचित कर्म फलों के कारण बहुत सारी वासनाएं हैं, बहुत सारी वासनाएं हैं। अभी कंपैरिजन में एक दूसरा व्यक्ति है जिसने पूर्व जन्म कर्म में पाप कर्म नहीं किए, पुण्य आत्मा रहा है पूर्व कर्म फलों, पूर्व जन्म में, तो उसके अंदर इस प्रकार से पाप करने वाली वासनाएं नहीं होंगी, है ना। तो जो व्यक्ति सात्विक है इस समय में, यानी कि पूर्व कर्म फल उसके इस प्रकार से रहे हैं कि वो सतोगुण में है, कंपेयर टू एक दूसरा व्यक्ति है जो तमोगुण में है, दोनों ही भक्त हैं, दोनों ही अभी भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित है उसके लिए आसानी होगी भक्ति नियमों को पालन करना, भगवान की सेवा कर पाना, क्योंकि वो सत्वगुण उसको मदद करेगा। लेकिन जो तामसिक गुण लिए हुए है उसको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी वो दोनों ही शरणागत हैं, इसलिए वो ऐसी नाव में बैठ गए हैं जिससे उनका उस पार जाना निश्चित है, तो शरणागति के कारण वो जल्दी ही वो सब तमोगुण का प्रभाव इत्यादि वो सब निकल जाएगा, इसलिए वो अंततः उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता अगर वो शरणागत हैं तो। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सो भगवान की शरण में आने से उनके सब पाप धुल जाएंगे, लेकिन जिसके ज्यादा हैं तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो भगवान देख रहे हैं कि अभी ये मेरा शरणागत है, तो भगवान उसको उसी अनुपात में ही कर्म फल जितने उसको जरूरी है उसकी दृढ़ता को होने के लिए उसी अनुपात में भगवान देंगे। तो शरणागति मुख्य है, अगर शरणागति हो गई तो फिर बाकी सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हालांकि जो भी डिस्टर्बेंस है, पर हम भगवान की संरक्षण में आ गए अभी, तो अभी भगवान की इच्छा से हमें फिर जो भी जितने कर्म फल मिलने हैं, रुकावट आनी है, वो सब आएगी, वो हमारे उसके लिए ट्रेनिंग के लिए ही है, वो हमारी ट्रेनिंग का भाग है वो, तो इसलिए वो विचलित नहीं करेंगे अगर हम शरणागत हैं तो, वो हमें पद से भ्रष्ट नहीं कर सकते, विचलित करेंगे, पर वो विचलित करना भी हमारी ट्रेनिंग के लिए जरूरी है, वो परीक्षाएं इस दृष्टि से। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सत्वगुण में है, उसने बहुत अच्छा पुण्य कर्म किए हैं, बहुत पायस है, पूरे जन्म में बड़े पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन अगर वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके शरणागत नहीं होता है या कम शरणागत है, उसे लग रहा है सत्वगुण में मैं तो अच्छा हूं, सब अच्छा है, मैं तो इतना नैतिकवादी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं मोरलिस्ट हूं और मैं संतुष्ट हूं, जीवन में बहुत अच्छा है मैं तो किसी का। दूसरा आदमी है जो बहुत तमोगुण में था, शराबी और सब, लेकिन स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करके वो भक्त को जब मिला तो उसने इच्छा की कि मुझे ये सब करने से बाहर निकलना है। ये साधु की बात सुन करके उसने निर्णय लिया, थोड़ा सा भी इच्छा की, थोड़ी सी गंभीरता थी कि मुझे भगवान की शरण लेनी है। तो अभी क्या होगा, एक व्यक्ति है सतोगुण में है लेकिन वो शरणागति नहीं ले रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छे से स्थित हूँ, सब बढ़िया चल रहा है मेरे जीवन में। वो जप करता है लेकिन किस लिए, भगवान सब अच्छा बनाए रखना, हमारे लिए जीवन में शांति हो, हम आपके भक्त हैं, ऐसे करके पुण्य पुण्यशाली है, देवी देवताओं के पास भी जाता है, सब पुण्य करता है, सबके सबको रिस्पेक्ट देता है, सब एक दूसरे आया, शराबी है, ये है, लेकिन अभी उसे भगवान की शरण में वो आ गया। तो वो जो शराबी है, जो शरणागत हो गया है, वो ज्यादा जल्दी भवसागर तर जाएगा उस सतोगुणी व्यक्ति से भी, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति सतोगुण में आया लेकिन वो अटक गया। सतोगुण की वजह से, वो सतोगुण की वजह से नहीं, मिथ्या अहंकार की वजह से वो सतोगुण में अटक गया कि मैं तो बहुत अच्छा हो गया, अभी मैं भगवत सेवा से पहले ही वो अटक गया, भगवान शुद्धता आने से पहले ही वो उस मिथ्या अहंकार पर सोचने लगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए उस वो अटक गया है, इसलिए उसकी प्रगति नहीं होगी। लेकिन ये नीचे से शुरू करेगा तमोगुण वाला व्यक्ति, लेकिन क्योंकि ये शरणागत हो गया इसलिए इसको बढ़ते 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 बहुत जल्दी से क्रॉस करके निकल जाएगा वो। इसीलिए हम देखते हैं कई बार बहुत सतोगुणी व्यक्ति हैं लेकिन भगवान की शरण में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भगवद गीता आइए, भगवत शरणागत सुनिए। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब अच्छे हैं, हम कोई बुरा नहीं करते, जो बुरा करते हैं उनको मंदिर जाना चाहिए, उनको जाना, हम लोग तो बहुत सब,
हम दिल के साथ बोलते हैं।
हाँ, दिल के साथ। तो वो दिल के साथ, उनको लगता है यही सबसे श्रेष्ठ स्तर है, इससे ऊपर क्या होता है, नैतिकता। हम किसी का बुरा नहीं करते, कर्म ही पूजा है, हम किसी का बुरा नहीं बोलते, तो फिर हमें शरणागत होने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर की अंडरस्टैंडिंग है, शरणागति का उनका मतलब ही नहीं पता है, वो सोचते हैं शरणागति क्या, हम बस किसी का बुरा नहीं करते, सब जीवन अच्छा चलेगा हमारा, हम अच्छा कर्म करते हैं हमारा अच्छा होगा, खत्म, और क्या करना है हमें। भक्ति तो वो करते हैं जो जिनको कुछ परेशानी है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी। तो वो लोग क्या है, मिथ्या अहंकार से अटक गए। एक्चुअली तो जो सतोगुण में, उससे क्या होना चाहिए था वास्तव में, तो अगर वो मिथ्या अहंकार नहीं होता तो उनको बहुत और सम्मान होना चाहिए था भगवान के बारे में सुनने के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, ये स्वाभाविक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो सतोगुण को मिसयूज कर रहे हैं, जो सतोगुण में आने की वजह से मिथ्या अहंकार से अटक गए हैं, वो फिर दुर्भाग्यशाली हो जाते हैं। उसके कंपैरिजन में वो, हम देखते हैं बुक डिस्ट्रिक्ट जाते हैं कई बार, बिल्कुल तमोगुणी लोग हैं, कई बार मांस की दुकान में मीट खाने वाले लोग हैं, बूचर हैं, ऐसे लोग भी हम उनको समझाते हैं तो अच्छा ऐसा है, दिखाओ, ऐसे वो लोग लेते हैं और थोड़ी सी उनके अंदर सिंसियरिटी है तो वो लोग धीरे 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 सब छोड़ देते हैं। जैसे हम देखते हैं हिप्पी लोग, प्रभुपाद भारत में प्रचार करने के लिए इतना प्रयास किए, उस समय भारत में बहुत सतोगुणी लोग थे, आज के जैसा भारत नहीं था उस समय, लेकिन कोई तैयार नहीं था भगवान की सेवा को, शुद्ध सेवा को स्वीकार करने के लिए। प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए, वहां के लोग तो सारे हिप्पी लोग थे, सब पाप कर्म करने वाले लोग थे, लेकिन उनके अंदर उन्होंने अपनी उनके अंदर उन्होंने प्रभुपाद को स्वीकार किया, थोड़ी सी सिंसियरिटी थी जिन लोगों के अंदर। तो अभी परिणाम क्या हुआ आप देखिए, 2-3 साल में वो लोग भारत आए, है ना, प्रभुपाद उनको लेके आए, और 2-3 साल किया उनका, तो इतनी जल्दी प्रगति हुआ कि वो लोग भारत के करोड़ों करोड़ों पुण्यशाली लोगों से बहुत आगे निकल गए स्पिरिचुअल लाइफ में, पूरा जीवन समर्पित कर दिए विद इन फ्यू मंथ्स, है ना, सब कुछ छोड़ दिए, सब तो सब छोड़ दिए। भले ही उनके कुछ अवशेष बचे रहे, जब यहाँ आए तो कभी कुछ उल्टे हाथ से कुछ टच कर रहे हैं, खा रहे हैं कुछ ऐसा कुछ, तो जो पुण्यशाली लोग हैं वो देख रहे थे कितने कैसे, इनको तो एटिकेट भी नहीं आते, उनको एटिकेट नहीं आते, लेकिन उनको भक्ति में शरणागति आपसे बहुत ज्यादा है, तो वहीं रुक गए हैं, उनको तो अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमसे, इनका जीवन शरणागत है, ये भगवान की सेवा में जीवन, आप क्या कर रहे हैं, आपको तो वही परिवार, मेरा सुखी परिवार, यू आर अटैच टू द फैमिली, दे आर अटैच टू सर्व कृष्णा, दे आर नॉट अटैच टू मेटीरियल वर्ल्ड, दे आर मच मोर एडवांस्ड, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। और धीरे धीरे उनके वो सब गलत एटिकेट भी खत्म हो जाएंगे, वो सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा हुआ, हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली, जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं या जो भी लोग हैं, इवन हम देखते हैं स्टूडेंट्स या कोई भी जो भी भक्ति लेता है, आजकल के स्टूडेंट्स तो मतलब वो हिप्पी से हिप्पी जैसे तो हैं सब स्टूडेंट्स आज के, दे डू ऑल सच नॉनसेंस थिंग्स. लेकिन भक्ति में आते ही कितना डिफरेंस होता है, कितनी बिल्कुल इसे तो लोग देखते हैं ना, ये जब जैसे ही इस्कॉन के संपर्क में आते हैं इनका पूरा भर जाता है. दे कैन सी सच ए बिग चेंज इन द पर्सनैलिटी इन एवरीथिंग. करेक्ट, पहले मांस खा रहे थे, पहले ये कर रहे थे, सो रहे, आलसी थे, अभी एकदम से पूरा बदल गए. तो ये शरणागति जो है वो ऐसी चीज है जो कितना भी गंदगी, कितनी कैसी भी कुछ भी हो, उसको तुरंत चला के भस्म कर देती है. ये शरणागति इतनी पावरफुल है, इसलिए डजंट मैटर कोई चाहे कितने भी तमोगुण में कैसा भी हो, इफ ही इज रेडी टू टेक. इसलिए हम सब जगह जाते हैं, हम ऐसा नहीं हम केवल सतोगुणी लोगों को ढूंढते हैं कि कौन सतोगुणी है, उसको हम भक्ति का प्रचार करेंगे. हो सकता है वो सतोगुणी है लेकिन वो अहंकारी हो, अटका हुआ हो, उसकी जगह एक तमोगुणी हो सकता है, उसके अंदर सुकृति हो, भक्ति सुकृति हो, या अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग कर ले. तो इसलिए हमें भक्ति का प्रचार करने में वी शुड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन कि कोई सतोगुणी है क्या है. वी शुड डिस्ट्रीब्यूट भक्ति टू एवरी वन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेटल कंडीशन, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू एडवांस इन डिवोशन सर्विस इज सरेंडर टू कृष्ण. ठीक है, ऑफेंसेस का रिजल्टेंट, ऑफेंसेस का रिजल्टेंट है, डिपेंड ऑन द ऑफेंसेस. वो हमारी भक्ति को रुकावट कर सकती है. वो अगर ऐसा अपराध है जो पाप कर्म की परिधि में आता है तो वो पूरी तरह से भक्ति को समूल नष्ट कर सकता है, और पाप कर्म फल उससे उदित होंगे तो उससे भौतिक कष्ट भी मिलेंगे. तो जो जैसे नाम अपराध हैं अलग अलग, तो उसमें से कुछ नाम अपराध तो बहुत डेंजरस हैं, जैसे वैष्णव अपराध है, हाथी माता अपराध, हाथी मैड एलिफेंट ऑफेंस. तो उससे हमारी भक्ति पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है. और नाम के बल पे पाप करना, ये भी बहुत खतरनाक पाप है नाम के बल पर. तो ये बहुत, इससे पूरी भक्ति नष्ट होगी और जो पाप करेंगे उसका फल मिलेंगे, है ना. शास्त्रों, हरि नाम को वेदों में शास्त्र में वर्णित शुभ सकाम कर्म के समान समझना, वो इतना हीनियस नहीं, वो इतना बहुत बड़ा, वो पाप कर्म नहीं बनता. उससे भक्ति में रुकावट होगी लेकिन ऐसा नहीं कि वो भौतिक रूप से भी वो हमें परिणाम देगा. तो बट ऑल ऑफेंसेस क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन अवर डिवोशन लाइफ. प्राइमरली ओवरकम करना है उसको, हम समझें कि हम पाप कर रहे हैं, क्या पाप है. तो मन में दृढ़ संकल्प बनाना कि इन पाप वृत्ति से निकलना है, भगवान से प्रार्थना करना और भजन तीव्रता से करते रहना. उससे वो जो पाप हुए हैं वो तो अपराध हुए हैं वो तो खत्म हो ही जाएंगे, और आगे अपराध वृत्ति भी खत्म हो जाएगी. सेवा करने से अपराध वृत्ति खत्म होती है. सेवा भावना जितनी डेवलप होगी उतनी अपराध वृत्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपराध और सेवा दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के. तो इसलिए सेवा वृत्ति, सेवा करते 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 ये अपराध वृत्ति खत्म हो जाएगी.
आदर्श पुरुष हैं कि जो विचार मन में हैं पूर्व जन्म के इंप्रेशन हैं, और हम जो थॉट्स पे एक्ट करते हैं उसका रिजल्ट, उससे जो रिजल्ट है या फल मिलता है, क्या वो प्री डिसाइडेड होता है?
कर्म करने से जो फल मिलता है क्या वो प्री डिसाइड होता है? प्री डिसाइड मतलब कर्म करने से फल उस कर्म के अनुसार होगा. और बहुत सारे कर्म भी हैं जिनका फल साथ में मिलेगा. मान लीजिए आपने आज स्टडीज की, कोई एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन किया, तो अभी ये जो आपने कर्म किया एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया, इससे भी एक फल मिला बना. वो फल एक तो है इमीडिएट फल, लॉन्ग टर्म फल, अलग अलग प्रकार के फल बनेंगे उससे भी, वो आपको समय समय भुगतने पड़ेंगे. अभी एक फल है उससे मान लीजिए कि इस एग्जाम में आप कैसा कितना अच्छा कर पाएंगे वो इस साल की पढ़ाई पर निर्भर करेगा. लेकिन पूर्व कर्म फल भी इस समय पर फलित होने वाले हैं, तो वो भी साथ में आपको फल प्रोड्यूस करेंगे. आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है लेकिन पूर्व कर्म फल है कि आपको तो सक्सेस नहीं मिलनी है, तो अगर पूर्व कर्म फल बहुत ज्यादा बलिष्ठ हैं तो आप इस समय पढ़ाई करेंगे लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमेशा ये कर्म फल जो भी बहुत सब मिला जुला के हमें मिलता रहता है, तो इसलिए ये सब कंबाइंड रिजल्टेंट है। और जो हमने अभी पढ़ाई की है उससे इस समय का एक रिजल्ट बना, आय का मिला, हमने बहुत ही भौतिक इच्छा से स्टडीज की, मुझे ये प्राप्त होना है, तो उससे एक और परिणाम क्या बना, इसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं फ्यूचर में आपकी डेवलप होंगी, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। और आपने पढ़ाई करने के टाइम में, स्टडीज करने के टाइम में कुछ वट पाप किए, पुण्य किए, जो भी किए उसके अनुसार भी फल बनेंगे। सो लाइक दैट इट्स कंटिन्यूअस चेंज। चलो तो पापी रहा है इसलिए भक्ति कर रहा है, तुम तो पापी नहीं हो, तुम क्यों भक्ति नहीं करते, भक्ति सबको करनी, चलो ये पापी है। जैसे प्रभुपाद से पूछा कि अरे ये हिप्पी लोग भी अभी भजन कर रहे हैं, ये हिप्पी लोग हैं, ये लोग हरे कृष्ण कर रहे हैं, मतलब एज इफ ये पापी है ना, इसलिए इनको जरूरत है हरे कृष्ण करने की, है ना, हम लोग पापी नहीं, हमें जरूरत नहीं है। तो या एक और तरीका है सोचने का, अरे ये क्या, ये पापी लोग हैं और ये हरे ये भजन कर रहे हैं, ये क्या, पहले पाप छोड़ो भजन क्या कर रहे हो, एक ये मेंटेलिटी है, है ना। तो शिव बाबा बोले कि अरे वो इतने पापी हैं वो भी भजन शुरू कर दिए, तो तुम पापी ने तुम क्यों भजन नहीं शुरू कर रहे, उसको ऐसे क्यों देख रहे हो कि ये पापी है ये क्या भजन करेगा। क्योंकि मेंटेलिटी क्या है कि पाप पुण्य ही सबसे बड़ी चीज है, पापों से निकलना ही सर्वश्रेष्ठ है बस, है ना। तो विचार ये है कि कोई भी आदमी भगवान का नाम नहीं ले सकता जब तक उसके वो पाप कर्म से पूरा छोड़ नहीं दे, तब तक वो भक्ति शुरू नहीं कर सकता, एक ऐसी विचारधारा है। कर्मकांड, पहले कर्मकांड करेंगे फिर उसके बाद में ज्ञान आएगा, उसके बाद में फिर मोक्ष मिलेगा, तो पहले पुण्य कर्म करना पड़ेगा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस में ऐसा होता है। लेकिन भक्ति डायरेक्ट प्रोसेस भी है जिसमें कोई आदमी कोई भी भौतिक स्थिति में हो, ब्राह्मणों के क्षुद्र हो, वो भगवान का नाम तुरंत शुरू कर सकता है, भगवत भक्ति तुरंत शुरू कर सकता है। लेकिन एक वैदिक विधि जो है ग्रेजुअल प्रोसेस की, उसमें शूद्र वो भक्ति नहीं कर सकता, पहले उसको ब्राह्मण बनना पड़ेगा, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शूद्र पहले पुण्य कर्म करेगा, फिर धीरे धीरे कई जन्मों का ब्राह्मण बनेगा, फिर जाकर के वो भगवान का नाम लेगा और फिर उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर कोई शूद्र या कोई निम्न स्तर पर व्यक्ति या पापी है, यदि वो भजन करना देखते हैं तो अरे क्या भजन करो, इससे क्या करो, पहले तुम ब्राह्मण बनो, पहले पुण्य कर्म करो। इसलिए वो विचारधारा थी कि हरे कृष्ण मंत्र केवल ब्राह्मण ले सकते हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि यस ये बात सही है कि शूद्र जो है जो भक्त नहीं है वो पुण्य कर्म करके एक दिन ब्राह्मण बनेगा और फिर ब्राह्मण बनने के बाद में वो फिर भक्ति के स्तर पे आएगा, दैट्स ओके। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भक्ति आश्रित हो गई किसी के ब्राह्मण बनने पर। भक्ति अगर कोई शुरू करना चाहे तो वो कहीं से भी शुरू कर सकता है, क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक, वो आत्मा का गुण है। शारीरिक चीजें उसको प्रभावित कर सकती हैं व्यक्ति को भक्ति लेने में, लेकिन अल्टीमेटली इंट्रिंसिकली भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मटेरियल क्वालिटीज। तो इसलिए कोई व्यक्ति भी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करके शरणागत हो सकता है, चाहे वो भौतिक स्थिति उसकी कैसी भी हो। माम ही पार्थ विपाशित्य ये भी स्यु पाप यो ने, यहां भगवान कहते हैं चाहे कोई कितना ही पापी योनि में क्यों ना गिरा हो, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास, स्त्री वैश्य शूद्र ये सब पाप योनिया है, फिर भी ते पी यान्ति परामगति, जो भी मेरी शरण में आते हैं वो परामगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान की शरणागति लेने में वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति के सदुपयोग से होता है, उसमें कोई भी शारीरिक भौतिक हमारी जो कंडीशनिंग है वो उसको अफेक्ट नहीं कर सकती है, वो आत्मा का कार्य है। अगर स्वतंत्र इच्छा शक्ति से हम कोई शरणागति लेना चाहता है कभी भी ले सकता है, तो वो चीज लोगों को पता नहीं होती है। इसलिए वो लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे मान लीजिए कोई शराबी है, अभी वो सिंसियरली रिपेंट कर रहा है और भगवान की भक्ति शुरू कर रहा है, तो हो सकता है एकदम से उसके सब अनर्थ नहीं जाएंगे, हो सकता है बीच बीच में कभी भी एक्सीडेंटली फिर भी शराब पी ले, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको भी भगवान क्या कहते हैं, अपिचे शूद्राचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। एक्सीडेंटल भी यदि कोई भक्त ऐसा पाप करते हुए दिखे तो भी उसको साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु मानो, उसकी निंदा मत करो कि ये क्या है। अगर एक्सीडेंटल है तो नॉट इंटेंशनल, भक्त जो है वास्तविक भक्त होगा, गंभीर होगा, तो कभी ऐसा नहीं करेगा, नाम के बल पे पाप करेगा, अभी जरा पीऊंगा फिर बाद में भगवान के सामने माफ कर दो, फिर दोबारा शराब पीऊंगा, ऐसे वो प्लानिंग नहीं करेगा। बट एक्सीडेंटली यदि उसके पूर्व वेग के कारण यदि अनायास कभी कुछ कर बैठता है जिससे उसको बहुत रिपेंटेंस भी होगी, उसको उगलानी भी होगी, वो उसका लक्षण है और वो जल्दी ही उससे निकल जाएगा बाहर, तो उसको तो साधु ही मानना चाहिए। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी है कि अंततः पुण्यकर्म करना ही सबसे बड़ी चीज है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का काम भी यही है, बस पुण्यकर्म करना। इसलिए तुम पापी हो, तुम्हें जरूरत है ज्यादा हरि नाम करने की, हम तो पापी नहीं, हमें क्या जरूरत है मंदिर जाने की, भगवान की भक्ति करने की। ये एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है जिससे बोलते हैं।
पुराने पाप ज्यादा है उससे सेवा उदासीन हम होंगे, तो अगर हम सेवा उदासीन है तो हम इससे इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा,
इसका
पुराने पाप ज्यादा है तो हम सेवा उदासीन होंगे, अगर हम सेवा उदासीन हो रहे तो इससे हम ये समझे कि हमारे पुराने पाप ज्यादा है।
यस, जब भी हमारी सेवा करने की इच्छा नहीं है, मतलब वो कर्मफल की वजह से हम नहीं कर पा रहे, यस, वो सब हटेंगे कैसे, उदासीनता कैसे हटेगी, सेवा करने से, भगवत भक्तों के संग में सेवा करने से वो उदासीनता हटेगी, क्योंकि वो कर्मफल तो हट ही जाएंगे अपने आप भगवान की सेवा करने से ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान की शरणागति में ये सब करने से, ये सब पाप कर्म तो नाम का आभास से भी हट जाते हैं ना, भगवान की भक्ति करने के केवल स्टार्टिंग से ही अपराध तो हट जाते हैं। भक्ति तो हम कर रहे हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के, उसका तो गौण परिणाम है पाप कर्मों का फल हटना, है ना। केचित केवल या भक्तिया वासुदेव परायण अख धुनवंती कार स्नेह निहारिव भास्कर, जैसे सूरज की आलोक आने से ही, सूरज अभी नहीं आया है लेकिन सूरज का जो लालिमा है आलोक स्टार्टिंग, उसी के आने से ही कोहरा छट जा शुरू हो जाता है, तो ऐसे ही केवल नामाभास से ही जितने भी पाप कर्म के फल हैं वो खत्म हो जाते हैं, जैसे अजामिल का हो गया, नामाभास लिया उसने तो अभी शुद्ध नाम तो पहुंचा नहीं था, नामाभास से ही कोहरा पाप कर्मों के फल हट जाते हैं। तो इसलिए हमारे पाप कर्मों के ही फल हैं जो हमें बाधा कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए कुछ और अधिक कुछ और अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही भक्ति के अंदर अपने आप शक्ति है, जितने भी सारे पाप कर्म के फल हैं वो तो नष्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि ये तो कृष्ण प्रेम दे सकती है, तो कर्म फल काटना तो ये तो उसका साइड बिजनेस है, वो तो साइड में हट जाएंगे सब। सो वी शुड कंटिन्यू डिवोशन सर्विस, हाँ, भगवान जो हमारे हृदय में है तो वो सभी सभी पाप कर्म सभी गंदगी जो है उसको साफ कर देते हैं।
पुराने पाप के कारण इंद्रिय भोग बीच में बाधा आते
हैं, जस्ट उसको टॉयलेट कीजिए, इंद्रिय भोग के विचार हैं उसको करिए मत, और भगवान की सेवा करते जाइए, और अगर इंद्रिय भोग के बहुत वेग है तो ठीक है, जो चीज कम से कम पुण्य कर्मों की परिधि में आती है, वो भगवत सेवा में मतलब पाप नहीं है, ऐसी चीज को इस भावना से कर सकते हैं कि अभी हम तुरंत इसको नहीं रोक पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के अंदर स्त्री के प्रति आकर्षण है, तो अभी ये तो हमारा स्वरूप लक्षण नहीं है, हमें तो कृष्ण के प्रति आकर्षित होना है, भोग के नहीं, वो भोग वासना है, लेकिन अभी उस वासना को भगवान की सेवा में नियोजित करने का एक विधि विधान है जो पुण्य के माध्यम से हो सकता है, पाप में नहीं जा करके, वो है विवाह। तो विवाह में के माध्यम से उस जो वासना है उसको हम भगवान की सेवा में डाउटेल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके अंदर इच्छा आ रही है व्यभिचार की, विचार आ रहा है व्यभिचार का, तो वो बाई फोर्स नो, दिस इज आउटसाइड द लिमिट, नॉट, वो तो बिल्कुल अपने को बस रोकना ही पड़ेगा, नो चांस। और भजन करते जाए, हरे कृष्ण भगवान की भक्ति करते जाए तो धीरे धीरे सब निकल जाए। उत्तर मिला। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।